नमस्कार भारत, तारीख 2 सितंबर दिन रविवार, मैं हूं वात्सल्य राय। अमेरिका का पाकिस्तान को एक और झटका, चरमपंथी संगठनों पर कार्रवाई में बताया नाकाम, रद्द की 30 करोड़ डॉलर की मदद। कश्मीर घाटी में क्यों निशाने पर आ गए हैं सुरक्षा कर्मियों के परिजन, क्या कहते हैं राजनीतिक दल।
सिक्योरिटी फोर्सेस को हम एक डिसिप्लिन फोर्स मानते हैं, उनकी तरफ से भी कई ऐसे लोगों को टारगेट किया गया जो मिलिटेंट फैमिलीज के साथ ताल्लुक रखते हैं।
और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने उठाया फर्जी मतदाताओं का मुद्दा, बीजेपी ने चुनाव आयोग के पाले में डाली गेंद।
आरोप लगाने से नहीं होगा, अगर उनको लगता है कुछ गड़बड़ है तो चुनाव आयोग को शिकायत करें, चुनाव आयोग उसका निराकरण करेगा।
उर्दू अखबारों की समीक्षा और खेल की खबरें भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिनेश उप्रेती से। अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने पाकिस्तान को दी जाने वाली 30 करोड़ डॉलर की आर्थिक मदद रद्द कर दी है। अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने ये फैसला इसलिए किया है क्योंकि पाकिस्तान चरमपंथी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहा है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल कोनी फॉकनर ने कहा है कि अमरीकी रक्षा विभाग अब इस रकम का इस्तेमाल आवश्यक प्राथमिकताओं पर करेगा। इससे पहले अमेरिका ने इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान को 50 करोड़ डॉलर की आर्थिक मदद रद्द कर दी थी। यमन में सऊदी अरब के नेतृत्व वाली सेना ने एक बस पर घातक हवाई हमले में अपनी गलती मानते हुए खेद जताया है। 9 अगस्त को उत्तरी सादा प्रांत के एक बाजार में हुए इस हमले में 40 से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी। गैर सरकारी संस्था इंटरनेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट के मध्य पूर्व के निदेशक जूस्ट हिल्टरमैन ने कहा है कि वो चाहते हैं कि इस बारे में विस्तार से पता लगाया जाए कि क्या गलत हुआ था। उन्होंने कहा, यह अहम है कि उन्होंने अपनी गलती मान ली है, लेकिन मैं इस मामले में विस्तृत जांच चाहता हूं कि ये गलती आखिरकार हुई कैसे। जांच इसलिए क्योंकि पहले जो बयान दिया गया था वो भी गलत साबित हुआ था। ऐसा हमला पहली बार नहीं हुआ है जिसमें कई आम नागरिक मारे गए हैं। हमने इस घटना के बाद भी ऐसी घटनाएं देखी हैं जिसमें कई बच्चों की मौत हुई है। ये थे इंटरनेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट के निदेशक जूस्ट हिल्टरमैन के शब्द। म्यांमार में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रेस की आज़ादी और रॉयटर्स के दो पत्रकारों की रिहाई की मांग को लेकर यंगून में रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने गिरफ्तार पत्रकारों के मास्क पहने हुए थे और हाथों में बैनर और तख्तियां ली हुई थीं। इन पत्रकारों पर रोहिंग्या मुसलमानों की हत्या की जांच के दौरान देश की खुफिया जानकारी का उल्लंघन करने का आरोप है। पत्रकारों ने इन आरोपों से इनकार किया है। रैली में एक फ्रीलांस पत्रकार माइंट क्याइंग ने कहा, हम सच चाहते हैं क्योंकि पत्रकार लोगों के लिए सच्ची खबरें लिखना चाहते हैं। ये डरने का समय नहीं है, इसीलिए मैं इस रैली में हिस्सा ले रहा हूँ। ये थे फ्रीलांस पत्रकार माइंट क्याइंग के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जॉर्डन ने फलिस्तीनी शरणार्थियों को आर्थिक मदद बंद करने के अमरीकी सरकार के फैसले की निंदा की है। जॉर्डन के विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका के इस फैसले से मध्य पूर्व में कट्टरपंथ को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र में शांति की कोशिशों को धक्का लगेगा। जर्मनी में पुलिस ने केमनित्स शहर में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए हजारों दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारियों को पीछे हटने का आदेश दिया है। पुलिस का कहना है कि इस अप्रवासी विरोधी रैली में लगभग 4,000 प्रदर्शनकारी शामिल हैं और इन्हें प्रदर्शन के लिए दिया गया समय अब खत्म हो गया है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टे आज से इसराइल की 4 दिन की यात्रा शुरू कर रहे हैं। वो पिछले 60 सालों में इसराइल जाने वाले फिलीपींस के पहले राष्ट्रपति हैं। इस दौरे का उद्देश्य इसराइल और फिलीपींस के बीच सैन्य और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाना है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में हवाई अड्डे की ओर जाने वाली सड़क पर चरमपंथी गुटों के बीच भीषण लड़ाई चल रही है। अभी ये पता नहीं चल सका है कि संघर्ष में चरमपंथियों के कौन से गुट शामिल हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं लाइव। नमस्कार, भारत की शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। अमेरिका ने पाकिस्तान को एक और झटका दिया है। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान चरमपंथी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रहा है और उसे दी जाने वाली 30 करोड़ डॉलर की मदद रोक दी है। अमेरिका ने यह फैसला विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की पाकिस्तान यात्रा के ठीक पहले लिया है। सुनिए न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप के अमरीकी राष्ट्रपति पद का ओहदा संभालने के बाद से ही अमरीका और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में तनाव अधिक बढ़ा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस साल जनवरी में भी पाकिस्तान की इस बात पर आलोचना की थी कि वो चरमपंथियों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई नहीं कर रहा, और इसीलिए ट्रंप ने पाकिस्तान को दी जाने वाली करीब 90 करोड़ डॉलर की आर्थिक मदद रोकने का फैसला भी किया था। लेकिन यह भी कहा था कि अगर अमरीकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस ये समझें कि पाकिस्तान चरमपंथियों के खिलाफ उचित कार्रवाई कर रहा है तो 300 मिलियन डॉलर की सैन्य मदद दे सकते हैं। और कल यानी शनिवार को अमरीकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने अपना फैसला सुनाया कि पाकिस्तान चरमपंथियों के खिलाफ जिस तरह कार्रवाई की जानी चाहिए नहीं कर रहा है, इसीलिए उसे 30 करोड़ डॉलर की सैन्य मदद रोकी जा रही है। जिम मैटिस का यह फैसला ऐसे समय में आया है कि जब 5 सितंबर को अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और अमरीकी सेनापति जोसेफ डनफर्ड पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। जिम मैटिस ने इस सिलसिले में इसी हफ्ते साफ किया था कि इस दौरे के दौरान अमरीका पाकिस्तान से साफ कहेगा कि चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाई जाए।
The Secretary of State and the Chairman are going to fly in to Islamabad to meet with the
विदेश मंत्री और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे और वहां नई हुकूमत से मुलाकात करेंगे, और हम ये साफ करेंगे कि हम सभी देशों को अपने दुश्मन यानी चरमपंथियों के खिलाफ लड़ाई किस तरह जारी रखनी है। हमारी मुलाकात में यह सबसे अहम मुद्दा होगा। अमरीकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस के शब्द। अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और अमरीकी फौज के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल जोसेफ डनफर्ड पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात करेंगे। पेंटागन द्वारा जो आर्थिक मदद रोकी गई है वो कोलिशन सपोर्ट फंड का हिस्सा है जो अमरीका की तरफ से पाकिस्तान को चरमपंथियों से लड़ने में मदद के लिए दी जाती रही है। ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान पर यह आरोप लगाता रहा है कि पाकिस्तान उन चरमपंथियों को पनाह देता है जो अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों और अफगानों पर हमले करते हैं। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक पेंटागन के प्रवक्ता कोन फॉकनर ने इस फैसले की वजह बताते हुए कहा कि चूंकि पाकिस्तान अमेरिका की दक्षिण एशिया के बारे में रणनीति में मदद के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा था, इसीलिए 300 मिलियन की आर्थिक मदद रोकने का फैसला किया गया है। पेंटागन के मुताबिक अब अगर कांग्रेस ने मंजूर किया तो ये रकम अन्य जरूरी कामों में लगाई जाएगी। इस वर्ष के शुरू में अमरीकी कांग्रेस ने भी पाकिस्तान को दी जाने वाली 500 मिलियन डॉलर की आर्थिक मदद रोक दी थी। याद रहे पिछले चंद महीनों में अमरीका ने पाकिस्तान की सेना के कुछ अफसरों को सैन्य प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रमों से भी हटा दिया था। इस तरह के कार्यक्रमों में कई दशकों से पाकिस्तानी सैन्य अफसर भी हिस्सा लेते रहे थे। सन 2002 से अब तक पाकिस्तान को चरमपंथियों से लड़ने के बदले में 33 अरब डॉलर की अमरीकी मदद मिल चुकी है। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
अगली खबर भारत प्रशासित कश्मीर से। दो दिन पहले कश्मीर घाटी में चरमपंथियों ने 11 ऐसे लोगों को अगवा किया जो पुलिस कर्मियों के रिश्तेदार थे। इन सभी लोगों को रिहा कर दिया गया, लेकिन इसे लेकर कश्मीर घाटी में एक नई बहस शुरू हो गई है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे राजनीतिक दल ऐसी घटनाओं पर चिंता जाहिर कर रहे हैं, साथ ही पुलिस को नसीहत भी दे रहे हैं। सुनिए माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
जम्मू कश्मीर पुलिस के कई कर्मियों के रिश्तेदारों को चरमपंथियों द्वारा अगवा किए जाने और उन्हें रिहा करने के बाद चरमपंथी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नायकू का एक कथित ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें नायकू कहते हैं कि हम पुलिस वालों के परिवार वालों या रिश्तेदारों के साथ कुछ नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमें मजबूर किया गया।
हम कश्मीरी पुलिस और पुलिस फैमिलीज के साथ कुछ नहीं करना चाहते थे, लेकिन आप लोगों ने हमको ये कदम उठाने के लिए मजबूर किया है।
बीती शनिचर और इतवार को चरमपंथियों ने दक्षिणी कश्मीर के 3 जिलों में करीब 11 ऐसे व्यक्तियों का अगवा किया था जो या तो पुलिस कर्मियों के रिश्तेदार थे या पुलिस कर्मी थे। अगवा किए गए व्यक्तियों में से कई पुलिस अधिकारियों के रिश्तेदार थे। हिजब कमांडर ने अपने ऑडियो संदेश में यह आरोप लगाया है कि चरमपंथियों के कई रिश्तेदार पुलिस हिरासत में लिए गए हैं। न्यायिकों के पिता को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था और उन्हें बीती इतवार को पुलिस हिरासत से रिहा किया गया। दक्षिणी कश्मीर में एक पुलिस अधिकारी ने एक स्थानीय अखबार को ये कहते हुए इस बात की पुष्टि की है कि न्यायिकों के पिता को हिरासत से रिहा किया गया है। अखबार ने लिखा है कि न्यायिकों के पिता दक्षिणी कश्मीर के अवंतीपुरा इलाके से हिरासत में लिए गए थे, जिनके साथ और भी 5 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। दक्षिणी कश्मीर की इस गंभीर स्थिति पर राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, चरमपंथी और सुरक्षा बल एक दूसरे के परिवार वालों को पीड़ित बना रहे हैं, जो सख्त निंदनीय है। ये हालात हमारे सिस्टम में एक नया रुझान पैदा कर रहा है। परिवार वालों को इसमें घिसेटा न जाए, जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी ट्विटर हैंडल पर लिखा, 11 व्यक्तियों का अगवा कश्मीर घाटी के हालात की गंभीरता को दर्शाता है। सबसे मायूस कुन चीज जो है वो ये कि इस पर एक तरफा गुस्से का इजहार। वो लोग और नेता जो सुरक्षा बलों की कथित ज्यादतियों पर बोलते रहते हैं, इस पर खामोश क्यों हैं? पीडीपी के प्रवक्ता रफी अहमद मीर कहते हैं कि जहां चरमपंथियों को परिवार वालों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, वहीं पुलिस को भी ऐसी गतिविधियों से बाज आना चाहिए जहां वो चरमपंथियों के परिवार वालों को निशाना बनाते हैं।
इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर ये एक्ट जो है किसी फैमिली के बच्चों को, बुजुर्गों को तकलीफ देना, किडनैप करना, इसका तो हम अप्रूव नहीं करते हैं। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से भी, सिक्योरिटी फोर्सेस को हम एक डिसिप्लिन फोर्स मानते हैं, उनको कोई लीगल प्रोटेक्शन भी है एफएसपा को लेकर। लेकिन उनकी तरफ से भी कई ऐसे लोगों को टारगेट किया गया जो मिलिटेंट फैमिलीज के साथ ताल्लुक रखते हैं। कोई मिलिटेंट तो यहाँ घर वालों से पूछकर मिलिटेंसी में जाता है नहीं।
पुलिस ने इस सिलसिले में इतवार को एक प्रेस लीज जारी कर दक्षिणी कश्मीर में कई व्यक्तियों को अगवा करने की घटनाओं की पुष्टि की है। बीते 15 दिनों में दक्षिणी कश्मीर में चरमपंथियों ने करीब जम्मू कश्मीर पुलिस के एक अधिकारी समेत 7 लोगों को मारा है। पुलिस आंकड़ों के मुताबिक बीते 30 वर्षों में जम्मू कश्मीर पुलिस के करीब 1640 जवान चरमपंथी हमलों या चरमपंथ मुखालिफ अभियानों में मारे जा चुके हैं। बीते 4 वर्षों से दक्षिणी कश्मीर चरमपंथ का गढ़ बना हुआ है। बीते 2 वर्षों में सबसे ज्यादा चरमपंथी दक्षिणी कश्मीर में मुठभेड़ों के दौरान मारे गए हैं। माजिद जहांगीर, BBC, श्रीनगर।
अगली खबर छत्तीसगढ़ से। राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने प्रदेश में फर्जी वोटरों के मुद्दे को उठाया है। कांग्रेस का आरोप है कि साल 2013 में हुए चुनाव में 2 लाख से ज्यादा ऐसे वोटर थे जिनका नाम कई जगहों पर था। कांग्रेस का दावा है कि ऐसे वोटरों की वजह से ही बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। पार्टी का आरोप है कि इस बार भी बीजेपी ऐसे वोटरों के सहारे चुनावी रणनीति तैयार कर रही है। इन आरोपों पर बीजेपी और चुनाव आयोग का क्या कहना है, सुनिए आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटें हैं और पिछले चुनाव में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी के मुकाबले महज 0.7% वोट अधिक मिले थे, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल रही थी। इन सभी 90 सीटों को मिलाकर दोनों दलों के बीच 97,000 वोटों का फासला था। अब कांग्रेस पार्टी ने एक चुनावी आंकड़ों पर काम करने वाली कंपनी के साथ मिलकर चुनाव आयोग के ही ऐसे दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं जिसमें दावा किया गया है कि राज्य में 2 लाख से अधिक फर्जी मतदाताओं को जोड़ा गया था। इन आंकड़ों के अनुसार लगभग 1,000 मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम 50 से भी अधिक जगहों पर है। इसी तरह 3,000 से अधिक मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम 25 से भी अधिक जगहों पर है। 7,000 से अधिक मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम 10 से भी अधिक जगहों पर है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और विधायक भूपेश बघेल कहते हैं,
ये सारे आंकड़े चीख चीख के कह रहे हैं कि ये उसका दुरुपयोग हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये षड्यंत्र कर रही है कि चिन्हित 10 विधानसभा में इस प्रकार से मतदाताओं की संख्या में जंप होगा। ये समझ लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र है।
लेकिन भाजपा नेता और राज्य के वरिष्ठ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि 97,000 वोटों से हार जीत और 2 लाख फर्जी मतदाताओं को जोड़ने के इस मामले में उनकी पार्टी की कोई भूमिका नहीं है।
चुनाव आयोग चुनाव करवाता है तो मुझे लगता है कि आरोप लगाने से नहीं होगा। अगर उनको लगता है कुछ गड़बड़ है तो चुनाव आयोग को शिकायत करें, चुनाव आयोग उसका निराकरण करेगा।
कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में राज्य चुनाव आयोग के साथ साथ केंद्रीय चुनाव आयोग को भी शिकायत की है। शनिवार को रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने ऐसी गड़बड़ी से इनकार नहीं किया, लेकिन ऐसी गड़बड़ी के उजागर होने का श्रेय उन्होंने चुनाव आयोग को ही दिया।
जब कागजों में वोटर सूची होती थी तब उसमें कुछ भी आप पता नहीं लगा सकते थे कि इसमें है क्या। आयोग ने ही उसको डिजिटाइज किया, डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस पर उपयोग करके डुप्लीकेट्स आइडेंटिफाई किए। डिजिटाइजेशन ने हम सबको सशक्त बनाया है कि हम ये सब चीजें देख सकें, इस तरह की शिकायत कर सकें।
रावत ने दावा किया है कि चुनाव आयोग जल्दी ही ऐसी तकनीक लाने वाला है जिससे मतदाता सूची में एक नाम की दोबारा प्रविष्टि नहीं हो पाएगी।
आगे चल के आपको ऐसी व्यवस्था देने वाला है जिसे हम यारो नेट कहते हैं। इतना सीमलेस चेंज इसमें आएगा कि आप जैसे ही नया एड्रेस भरेंगे आपका नई जगह पे नाम दर्ज हो जाएगा और पुरानी जगह पे अपने आप कट जाएगा, तो ये डुप्लीकेट की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।
अगले दो महीनों में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और फिलहाल तो चुनाव आयोग के सामने यह बड़ी चुनौती होगी कि इस महीने प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची में फर्जी नामों की पहचान करे और उन्हें सूची से बाहर भी करे। आलोक तुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
आगे बढ़ते हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाक विभाग के पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरुआत की। पोस्ट पेमेंट्स बैंक से बैंकिंग क्षेत्र में क्या बदलाव हो सकते हैं, हमारे साथी मोहम्मद शाहिद ने ये सवाल किया आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा से।
देखिए, डाक विभाग की जो अस्तित्व को लेकर के कुछ समय पहले सवाल उठने लगे थे कि क्योंकि लोग चिट्ठी भेजते नहीं थे, ईमेल का दौर आ गया था, तो जो उनकी कमाई का बड़ा जरिया था वो कहीं ना कहीं प्रभावित होने लगा था। अब ऐसे में तकनीक क्या कुछ मौका मुहैया करा सकता है, वो सामने नजर आया पोस्टल पेमेंट बैंक के रूप में। देखिए, जहाँ तक सवाल है बैंकिंग व्यवस्था का, अगर आप देखें तो आज के दिन में गांवों में अगर मैं बात करूँ तो लगभग 50,000 बैंक की शाखाएं हैं, और अगर मैं सेमी अर्बन एरिया को भी मिला दूँ तो लगभग 75,000 पे पहुँच। दूसरी ओर अगर आप पोस्ट ऑफिसेज की बात करेंगे तो देश भर में लगभग 1,55,000 पोस्ट ऑफिसेज हैं, जिसमें से 1,30,000 जो वो ग्रामीण इलाकों में या अर्धशहरी इलाकों में है। तो ऐसे में आपके पास एक वित्तीय व्यवस्था के लिए एक बना बनाया आधार आपके सामने उपलब्ध हो जा रहा है। दूसरी जो एक बड़ी बात जो इसमें ये है कि डाकिये के साथ एक अलग तरह की आत्मीयता होती है। आपने देखा होगा कि डाकिया जो है वो गांव देहात में या इवन शहरों में भी जब कभी आया करता था, अभी भी आते हैं, तो उनके साथ एक अलग तरह का संबंध बन जाता है। वही आदमी आपकी वित्तीय जरूरत को पूरा करने का भी साधन लेकर के आता है और विश्वास का माहौल बना होता है, तो निश्चित तौर पर ये एक विन-विन सिचुएशन है डाक व्यवस्था के लिए भी। और जो लोग किसी ना किसी वजह से बैंकिंग व्यवस्था में बहुत आसानी से नहीं जुड़ पा रहे थे, जनधन अकाउंट खुल गया लेकिन फिर भी और चीजें उनको नहीं मिल पा रही थी, इनसे वो जुड़ पाएंगे।
भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो उससे इस पे कितना फर्क पड़ सकता है? और दूसरा, जो डाक विभाग की बात की जाती थी कि वो घाटे में जा रहा है, उस तरीके से लाभ नहीं कमा पा रहा है, तो इससे दोनों को क्या फायदा होगा?
पहली बात, जहाँ तक अर्थव्यवस्था की है तो आपको पता ही होगा कि जो खेती बाड़ी का पूरे हमारे सकल घरेलू उत्पाद में जो योगदान है वो 15-17% से ज्यादा नहीं रहा है, जबकि हम ये सभी कहते हैं कि 65% आबादी जो है, 65% आबादी जो है वो गाँव में रहती है। अब गाँव में जो सेविंग है, जो बचत है, उसको हम कैसे फॉर्मल सिस्टम में चैनलाइज कर सकें, वो अगर चैनलाइज करेंगे तो उससे आपके अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था में वही सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट का काम करेगा। तो अब इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक के जरिए उस जो कुछ भी डिपॉजिट्स आ रहे हैं उनको हम चैनलाइज करेंगे, उसका इस्तेमाल जो है वो अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए कर सकते हैं। जहाँ तक रहा सवाल कि डाक विभाग का, देखिए, डाक विभाग जो आपको सुविधाएं मुहैया कराएगा उससे उसके लिए आमदनी का इंतजाम होगा। तो जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि तकनीक ने जैसी चुनौती डाक विभाग के लिए पैदा की थी, वही तकनीक एक मौके के रूप में सामने आया है और उम्मीद की जानी चाहिए कि डाक व्यवस्था का स्वरूप इससे बदलेगा।
जानकारी दे रहे थे शिशिर सिन्हा। देश में साल 2019 में आम चुनाव होने हैं, उसके पहले उत्तर प्रदेश का राजनीतिक घटनाक्रम दिलचस्प हो गया है। एक तरफ समाजवादी पार्टी महागठबंधन बनाने की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी से अलग हो गए हैं। क्या रही इसकी वजह, हमारे साथी प्रदीप कुमार ने शिवपाल यादव से ये सवाल किया।
देखिए, समाजवादी पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से भटक चुकी थी। किसी मीटिंग में बुलाया समाजवादी पार्टी, प्रदेश कार्यकारी की बैठक हुई क्या बुलाया, राष्ट्रीय कार्यकारी की बैठक हुई क्या बुलाया, क्या किसी विधानमंडल दल की बैठक हुई क्या मुझे बुलाया, तो फिर इतनी उपेक्षा, इतना अपमान, तो फिर तब भी मैंने सोचा कि भाई सब लोग एक रहे, पार्टी एक रहे, जितने भी समाजवादी पार्टी में हैं सब नेताजी की वजह से हैं, तो फिर जब उन्हीं का अपमान जब करोगे तो मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मैंने नेताजी के आशीर्वाद लेकर के, नेताजी से बातचीत करके ही हमने ये फैसला लिया है। बीजेपी से मेरी कभी बात हुई नहीं और बीजेपी ने भी कभी मुझसे बात की नहीं। अब जिन लोगों से मैं बात करता रहा हूँ, इंतजार भी करता रहा हूँ, तब भी अपमान, तब भी उपेक्षा,
आरोपों से किनारा और तमाम सारी शिकायतें। शिवपाल यादव से प्रदीप कुमार की ये पूरी बातचीत आप आज शाम दिन भर में सुन सकते हैं।
खुद खुशियां दे रहा है तुरगे प्यो ते पुत कुड़े।
लड़की की शादी आ गई तो दो साल में कोई फसल हुई नहीं, ये कर्जा फेरते फेरते शादी रुक गई।
भारत में किसान को अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन वही अन्नदाता आत्महत्या के लिए आज क्यों विवश है? भारत में बढ़ते कृषि संकट पर बीबीसी की विशेष सीरीज में सुनिए पंजाब, विदर्भ और मराठवाड़ा से जमीनी रिपोर्ट्स, सोमवार 3 सितंबर से दिन भर में।
और अखबारों की आज की सुर्खियां क्या है बताने के लिए स्टूडियो में आ चुके हैं दिनेश उप्रेती। जी
वासिल जी, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लॉन्चिंग की खबर को कई अखबारों ने सुर्खी बनाया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए समस्या के लिए यूपीए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि नामदारों ने फोन बैंकिंग के जरिए महज 6 साल में लाखों करोड़ रुपये कुछ बड़े लोगों को बांट दिए। इंडियन एक्सप्रेस ने जकार्ता एशियाई खेलों में मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल जीतने वाले अमित पांघल की खबर तस्वीर के साथ प्रकाशित की है। 22 साल के अमित ने उज्बेक मुक्केबाज को अपने पंचों से पस्त कर स्वर्ण पदक हासिल किया।
जी,
गुड़गांव लैंड डील मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ FIR की खबर भी कई अखबारों में है। इनके खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और फ्रॉड के मामले दर्ज किए गए हैं। भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह के बयान को इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर छापा है। राजनाथ ने कहा कि लोकतंत्र में सबको बोलने की और सब कुछ करने की आज़ादी है, लेकिन देश तोड़ने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सरकार के लोकतांत्रिक अधिकारों पर लगाम लगाने की खबरों पर राजनाथ ने कहा कि प्रेशर कुकर को कंप्रेस करने का कोई प्रयास नहीं होगा। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि असंतोष लोकतंत्र का सुरक्षा वाल्व है और यदि आप सुरक्षा वाल्व को बंद करेंगे तो प्रेशर कुकर फट जाएगा।
यानी संकेतों में बातचीत जारी है आगे भी।
रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत कल श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के नए गवर्नर सत्यपाल मलिक से मुलाकात करेंगे। ये खबर है हिंदुस्तान टाइम्स की। खबर के मुताबिक इन तीनों के बीच ये पहली मुलाकात होगी जिसमें राज्य में सुरक्षा हालात और आगामी पंचायत चुनाव की समीक्षा होगी।
जी,
नागरिक विमानन निदेशालय यानी DGCA ने एयरलाइंस को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान टॉयलेट टैंक बीच आसमान में खाली किया तो उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। पिछले दिनों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस पर नाराजगी जताते हुए DGCA को फटकार लगाई थी और कहा था कि अगर 31 अगस्त तक सर्कुलर जारी नहीं किया गया तो वो DGCA के कर्मचारियों का वेतन रोक देगा।
बहुत शुक्रिया दिनेश जी। और अब वक्त है पाकिस्तान के उर्दू अखबारों की साप्ताहिक समीक्षा का, जिसे तैयार किया है BBC संवाददाता इकबाल अहमद ने और सुना रहे नवीन नेगी।
पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों में इस हफ्ते पाकिस्तान के अमेरिका और ईरान से रिश्तों के बारे में खूब लिखा गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि वो अमेरिका की कोई भी गलत बात नहीं मानेंगे, लेकिन वो अमेरिका से सम्मान के साथ संबंध रखना चाहते हैं। एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक इमरान खान का कहना था कि वो अमेरिका के मामले में अपने पुराने नजरिए पर कायम हैं। इस मौके पर इमरान खान ने एक बार फिर इस बात को दोहराया कि वो भारत समेत सभी पड़ोसी देशों से बेहतर संबंध चाहते हैं, लेकिन उनके अनुसार भारत कोई सकारात्मक रवैया नहीं दिखा रहा है। इस्लामाबाद में पत्रकारों से बातचीत के दौरान इमरान खान ने कहा कि उनके सामने इस समय ढेर सारी चुनौतियां हैं। उन्होंने सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा की भी तारीफ की। इमरान खान ने पाकिस्तान सेना के मुख्यालय का दौरा किया था और सेना प्रमुख समेत कई वरिष्ठ सेना अधिकारियों से मुलाकात की थी। जंग के संपादकीय के अनुसार इमरान खान ने वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से पूरे 8 घंटे तक देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। संपादकीय के अनुसार ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पिछले दिनों में सरकार और सेना के रिश्ते अच्छे नहीं थे और देश को मार्शल लॉ के दौर से गुजरना पड़ा था, लेकिन ये सब बातें अब पुरानी हो चुकी हैं और उन सबको भुलाकर आगे बढ़ना ही देश और समाज के लिए बेहतर है। अखबार दुनिया ने इमरान खान की पत्रकारों से इसी मुलाकात का जिक्र करते हुए सुर्खी लगाई है, चाहे सरकार छोड़नी पड़े लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में पीछे नहीं हटूंगा। अखबार दुनिया के अनुसार इमरान खान ने कहा है कि बिना किसी भेदभाव के सबका हिसाब होगा और भ्रष्ट लोगों की चीखें निकल जाएंगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष में कई लोग बहुत भ्रष्ट हैं और आने वाले दिनों में उनके खिलाफ ऐसी ऐसी बातें सामने आएंगी कि लोगों के होश उड़ जाएंगे। इमरान खान ने पाकिस्तानी मीडिया से अपील की है कि वो उन्हें सिर्फ 3 महीने का समय दें, उसके बाद उनके किसी फैसले की आलोचना करें। ईरान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का दौरा किया है। ईरानी विदेश मंत्री जवाद जारीफ ने इमरान खान के अलावा विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात की। अखबार नवाए वक्त ने जवाद जरीफ और इमरान खान की मुलाकात के बाद लिखा है कि पाकिस्तान ने ईरान के परमाणु समझौते मामले में ईरान के रुख का समर्थन किया है।
उर्दू अखबारों की समीक्षा सुना रहे थे नवीन नेगी और अब जान लेते हैं खेल की दुनिया की हलचल।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त।
जो सोचे गए थे, जो प्लानिंग की थी, वो सब कामयाब हुई है। देखिए, मुश्किल तो होता ही है जी, क्योंकि फाइनल में कोई अच्छा बॉक्सर ही आएगा, क्योंकि ओलंपिक चैंपियन भी था, तो इसके साथ अलग से स्ट्रेटेजी बना के चलना पड़ा है। जैसे जैसे कोचिंग ने बताया है वैसे उस पर अमल किया है और आज इसके साथ जीत कर बहुत अच्छा लग रहा है।
ये शब्द है भारत के मुक्केबाज अमित फांगल के, जिन्होंने कल 49 किलो भार वर्ग में इंडोनेशिया में जारी 18वें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फाइनल में उन्होंने उज्बेकिस्तान के हसन बोए दुस्मतोव को 3-2 से हराया। उनके अलावा कल ही ब्रिज में पुरुष युगल में प्रणव वर्धन और शिवनाथ सरकार की जोड़ी ने भी स्वर्ण पदक जीता। स्क्वैश में भी महिला टीम ने रजत पदक जीता, जिसमें दीपिका पल्लिकल, जोशना चिनप्पा, तन्वी खन्ना और सुनैना कुरुविला शामिल थी। इसके अलावा भारत की पुरुष हॉकी टीम ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता, जबकि पिछली बार भारत चैंपियन था। अब भारत के खाते में 15 स्वर्ण, 24 रजत और 30 कांस्य पदक सहित कुल 69 पदक हैं, जबकि चीन 132 स्वर्ण, 92 रजत और 65 कांस्य पदक सहित 289 पदकों के साथ पहले पायदान पर है। उधर भारत और इंग्लैंड के बीच साउथहैम्पटन में खेला जा रहा 4th टेस्ट मैच दिलचस्प स्थिति में पहुंच गया है। कल खेल के 3rd दिन इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 8 विकेट खोकर 260 रन बना लिए थे। स्टंप के समय सैम करिन 5 चौकों की मदद से 37 रन बनाकर नाबाद थे। वैसे कल एक समय इंग्लैंड की दूसरी पारी तब गहरे संकट में फंस गई जब उसके 4 विकेट केवल 92 रन पर गिर चुके थे, लेकिन उसके बाद कप्तान जो रूट ने रन आउट होने से पहले 48, बेन स्टोक्स ने 30 और विकेटकीपर जॉस बटलर ने 69 रनों की पारी खेलकर इंग्लैंड को संभाल लिया। भारत के मोहम्मद शमी ने 53 रन देकर 3 और ईशांत शर्मा ने 36 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। पहली पारी के आधार पर 27 रनों से पिछड़ने वाली इंग्लैंड के पास अब 233 रनों की बढ़त है और उसके 2 विकेट बाकी हैं। वहीं 15 तारीख से शुरू होने जा रहे एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत ने नियमित कप्तान विराट कोहली को आराम दिया है और उनकी जगह टीम की कप्तान रोहित शर्मा संभालेंगे। टीम में मनीष पांडे, केदार जाधव, अंबाती रायडू और भुवनेश्वर कुमार को जगह दी गई है।
और चलते चलते मुख्य समाचार दिनेश उप्रेती से।
बीबीसी समाचार। अमेरिकी सेना ने कहा है कि उसने पाकिस्तान को दी जाने वाली $30 करोड़ की आर्थिक मदद रद्द कर दी है। यमन में सऊदी अरब के नेतृत्व वाली सेना ने एक बस पर घातक हवाई हमले में अपनी गलती मानते हुए खेद जताया है। म्यांमार में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रेस की आज़ादी और रॉयटर्स के 2 पत्रकारों की रिहाई की मांग को लेकर यंगून में रैली निकाली। जॉर्डन ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों को आर्थिक मदद बंद करने के अमरीकी सरकार के फैसले की निंदा की है। जर्मनी में पुलिस ने केमनित्स शहर में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए हजारों दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारियों को पीछे हटने के आदेश दिए हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति रॉड्रिगो डुटर्टे आज से इसराइल की 4 दिनों की यात्रा शुरू कर रहे हैं। विंबलडन चैंपियन एंजेलिक कर्वर US Open से बाहर हो गई हैं। 3rd दौर में कर्वर को 29वीं वरीयता प्राप्त डोमिनिका सिवलुकोवा ने 3-6, 6-3, 6-3 से हराया। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे दीपक जसरोटिया। आपसे अगली मुलाकात दिन भर में शाम के वक्त 7:30 बजे होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।